ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा लगायत सीमा विवाद संबंधी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रसभा से सर्वसम्मति से पारित। सीमा विवाद के विषयों को कूटनैतिक तरीके से समाधान किया जा सकता है, परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ग्यवाली का कथन। सूचना प्रविधि विधेयक के विषयों में फैलाए गए भ्रम के पीछे न लगने का संचार मंत्री गोकुल प्रसाद बासकुटा ने किया आग्रह। और ताइवान में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में सेना प्रमुख समेत हुई 8 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रसभा की आज की बैठक ने कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा आदि सीमा विवाद के विषयों में राष्ट्रसभा में दर्ज की गई संकल्प प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया है। इससे पहले बैठक में संकल्प प्रस्ताव के विषय में उठे सवालों का जवाब देते हुए परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ग्यवाली ने कहा कि सरकार नेपाल की राष्ट्रहितों के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। ग्यवाली ने कहा कि सीमा विवाद के विषयों को कूटनैतिक माध्यम से समाधान किया जा सकता है और इसके लिए सरकार विश्वस्त है। इससे पहले संकल्प प्रस्ताव के विषय में की गई विचार विमर्श में सांसदों ने लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी आदि सीमा विवाद के विषयों को राजनीतिक और कूटनैतिक तवर से वार्ता के माध्यम से समाधान करने की आवश्यकता पर जोर दिया। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सचिवालय की आज हुई बैठक में माघ 9 गते होने वाली राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के लिए पार्टी की ओर से उठने वाले उम्मीदवारों के नाम पर विचार विमर्श होने के बावजूद निर्णय नहीं हो पाया। इसकी जानकारी नेकपा के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ने दी। साथ ही उन्होंने बताया कि नेकपा सचिवालय की अगली बैठक कल सुबह 8:30 बजे होगी। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्यसमिति की आज हुई बैठक में राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों का चुनाव एवं समसामयिक विषयों में विचार विमर्श किया गया। पार्टी के सभापति शेर बहादुर देवबा के सभापतित्व में हुई इस बैठक ने राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन में पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों का चयन करने का अधिकार केंद्रीय समिति के पदाधिकारियों को देने का निर्णय लिया है। इसकी जानकारी पार्टी कार्यालय के मुख्य सचिव कृष्ण पौड़ेल ने दी। इसी तरह गन्ने के किसानों को जल्द ही रकम भुगतान के लिए प्रभावकारी पहल के साथ सरकार से मांग करने का निर्णय बैठक में लिया गया है। साथ ही बैठक ने सूचना प्रविधि विधेयक तथा नेपाल विशेष सेवा गठन और संचालन संबंधी कानून के संशोधन एवं एकीकरण के लिए बनी विधेयक के विरोध में 77 जिलों के प्रशासन कार्यालय के जरिए आगामी पौष 28 गते विरोध पत्र सौंपने का निर्णय लिया है। इसकी जानकारी पार्टी द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में दी गई है। चीनी मिल और गन्ने के किसानों की समस्याओं का समाधान आगामी माघ के पहले हफ्ते तक होगा। इसकी जानकारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री लेखराज भट्ट ने दी है। राष्ट्रसभा की आज हुई बैठक में मंत्री भट्ट ने बताया कि सरकार गन्ने के किसानों के 11 सूत्रीय मांगों के प्रति गंभीर है और गन्ने की खरीद एवं बिक्री के लिए सहज वातावरण बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने विदेशों से चीनी आयात करने पर 40% भंसार बढ़ाने और चीनी को खरीद कर लाने में भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध किए जाने की जानकारी दी। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल प्रसाद बासुटा ने सूचना प्रविधि विधेयक के विषयों में फैलाए गए अफवाहों और अनावश्यक भ्रम में न फंसने का आग्रह किया है। मंत्रिपरिषद की बैठक द्वारा किए गए निर्णयों को सार्वजनिक करते हुए मंत्री बासुटा ने सरोकार वालों एवं राजनीतिक दलों के नेताओं से आग्रह किया कि किसी भी तरह का पूर्वाग्रह न रखते हुए विधेयक में व्यवस्थित प्रावधानों के विषयों में टिप्पणी ही करें। सरकार ने काठमांडू की चक्रपथ अंतर्गत रही कलंकी, महाराजगंज, धोबीकोला खंड की सड़क सीमा 31 मीटर कायम करने और आवश्यकता अनुरूप भूमि अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद की पौष 14 गते हुई बैठक द्वारा किए गए निर्णय को सार्वजनिक करने के लिए सिंह दरबार में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल प्रसाद बासकुटा ने बताया कि चीन सरकार के सहयोग में शुरू होने वाली इस सड़क निर्माण परियोजना के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति दी गई है। इसी क्रम में एक स्वास्थ्य रणनीति 2076, स्थानीय तह की प्रशासकीय भवन पूर्वाधा विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि 2076 और राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि 2076 को स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। इसकी जानकारी मंत्री बांसकुटा ने दी है। इसी तरह बैठक ने ऋण असूली न्यायाधिकरण में रहे रिक्त बैंकिंग सदस्य में नरेश राज अरियाल को आगामी 5 वर्षों के लिए पुनर्नियुक्त करने, सांस्कृतिक संस्थान के अध्यक्ष पद में प्रेमनाथ अधिकारी और महाप्रबंधक के पद में अशोक कुमार राय को 4 वर्षों के लिए नियुक्त करने का उपभोक्ता संरक्षण समिति 2076 को स्वीकृत करने, प्रदेश तथा स्थानीय तहों में अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता परिचालन मापदंड 2076 को स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। इसकी जानकारी मंत्री बांसबुटा ने दी है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं समय व्यापारिक विश्राम का।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे, त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। बाजुरा के हिमाली गांवपालिका वार्ड नंबर 7 बादु स्थित कॉरिडोर से कर्णाली नदी में जीप गिरने से 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1 लापता है। हादसे में मारे गए लोगों में गाड़ी के चालक बाजुरा की जगन्नाथ गांवपालिका 5 गोत्री के 27 वर्षीय रमेश शाही, हिमाली गांवपालिका 6 धुलाचौर के 35 वर्षीय पवन भंडारी, कैलाली मोहनियाल गांवपालिका 5 के 33 वर्षीय दिनेश कुमार खर्ती मगर हैं शामिल, और बाजुरा के प्रहरी प्रमुख उद्धव सिंह भाट से मिली जानकारी के मुताबिक लापता हुए एक व्यक्ति की अब भी शनाख्त होनी बाकी है। हादसे में घायल हुए 4 लोगों में से 2 की हालत नाजुक है, उनका इलाज हेलीकॉप्टर से बांके के कोहलपुर ले जाने की तैयारी की गई है। ये जानकारी सहायक प्रमुख जिलाधिकारी समीर भंडारी ने दी है। साथ ही रौतहट के चंद्रपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 8 संतपुर स्थित सड़क खंड में ट्रिपर्स ने साइकिल को टक्कर दी, जिससे रौतहट वृंदावन नगरपालिका 1 की राजकुमार राउत पटेल के मौके पर ही मौत होने की जानकारी इलाका प्रहरी कार्यालय चंद्रपुर रौतहट ने दी है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि सहकारी छोटे और आधारभूत तहों में काम करने वाले किसानों को प्राथमिकता में रखना चाहिए। चितवन की रत्ननगर 5 डरौली में कृषि तालीम तथा अनुसंधान केंद्र का आज उद्घाटन करते हुए अध्यक्ष दाहाल ने उत्पादन के महाअभियान में सभी किसानों को समावेश करने की बात बताई। साथ ही अध्यक्ष दाहाल ने यह भी कहा कि पार्टी और सरकार दोनों ही सामाजिक न्याय सहित के समाजवाद का आधार तैयार कर किसानों को आत्मनिर्भर बनाकर अर्थतंत्र के पक्षों में काम करने के लिए अग्रसर बनाने की कोशिश में लगी है। अर्थमंत्री डॉ युवराज खतीवड़ा ने बताया कि सुदूर पश्चिम प्रदेश में उत्तर दक्षिण को जोड़ने वाली सड़क के विस्तार काम को सरकार ने प्राथमिकता में रखा है। कैलाली उद्योग वाणिज्य संघ द्वारा आज धनगढ़ी में आयोजित कार्यक्रम में अर्थमंत्री डॉ खतीवड़ा ने सुदूर पश्चिम प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय नाका संचालन के लिए पहल की जाएगी। साथ ही मंत्री डॉ खतीवड़ा ने यह भी बताया कि कैलाली के गौरी फंड का नाका के स्तनोत्ति के लिए भारत सरकार सकारात्मक है। मौके पर कैलाली उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष पुष्प राज कुंवर ने विभिन्न मांग सहित का ज्ञापन पत्र मंत्री खतीवड़ा को सौंपा है। मौसम में बदलाव आने के साथ ही सुदूर पश्चिम प्रदेश के विभिन्न जिलों में बर्फबारी शुरू हुई है। सुदूर पश्चिम के अछाम, दारचूला, बाजुरा, बझांग, डडेलधुरा, डोटी, बैतड़ी सहित के जिलों के ऊपरी भागों में बर्फबारी होने से ठंड बढ़ने की जानकारी स्थानीय ने दी है। अछाम के खपतड़, रामा रोशन, कमल बाजार, चौरपाटी, ऋषिदह, सुतार, दरना बैतड़ी के खोड़पे, श्रीभावर, ढोलिया मोड़, सिगास धुरा और रुकुम पूर्व के पुथा उत्तर गंगा और सिसने गांवपाले के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है, जिसके कारण वहां का जनजीवन प्रभावित हुआ है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ताइवान में आज हेलीकॉप्टर हादसे में सेना प्रमुख सहित 8 लोगों की मौत हो गई है। ये हेलीकॉप्टर राजधानी ताइपे के करीब पहाड़ी इलाके में हादसे का शिकार हो गया है। हादसे में जान गंवाने वालों में सेना के 3 मेजर जनरल भी शामिल हैं। चीन से तनातनी के बीच ये हादसा ऐसे समय पर हुआ है जब ताइवान में 11 जनवरी को राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। चुनाव समेत आंतरिक मामलों में चीन की दखल को रोकने के लिए ताइवान ने हाल में एक कानून बनाया था। चीन के इस द्वीपीय क्षेत्र को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को स्वायत्त देश बताता है। हेलीकॉप्टर में कुल 13 लोग सवार थे, जिनमें से 5 की जान बच गई है। सेना प्रमुख शेन ताइवान की यिलान काउंटी में सेना सैनिकों से मिलने के लिए ब्लैक हॉक के हेलीकॉप्टर से रवाना हुए थे, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर ताइपे के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस की और न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18 और न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा लगायत सीमा विवाद संबंधी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रसभा से सर्वसम्मति से पारित। सीमा विवाद के विषयों को कूटनैतिक तरीकों से समाधान किया जा सकता है, पर राष्ट्रमंत्री प्रदीप गवाली का कथन। सूचना प्रविधि विधेयक के विषयों में फैलाए गए भ्रम के पीछे न लगने का संचार मंत्री गोकुल प्रसाद बासुटा ने किया आग्रह। और ताइवान में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में सेना प्रमुख समेत हुई 8 लोगों की मौत। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए आगे दीजिए, सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।